आवाज टीवी, ई आवाज टीवी पे आप जाइए या हमारे ई आवाज डॉट कॉम पे, वहां दो बटन नजर आएंगे आपको, एक लिसन लाइव का जिसपे आप रेडियो सुनते हैं और दूसरा वॉच लाइव का जिसपे आप टीवी 24 आवर्स आप ई आवाज टीवी देख सकते हैं। आज वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, ये है अजताब मारिया खान बलोच। मारिया खान बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं की हैं और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंसाफ लॉयर्स फोरम लाहौर। इन्होंने बातचीत की है आरिफा मुजफ्फर जी से, बहुत ही अंदरूनी किस्म की अंदर की बातें बताई हैं आपने, वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखना और सुनना नहीं भूलिएगा। रेडियो पर अगर आप हैं तो 6478724900 पे आप डायल कर सकते हैं या आप टीवी पे चले जाएं eawaz.com पे एंड वॉच लाइव पे जाके। मारिया खान बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंसाफ लॉयर्स फोरम लाहौर एंड आरिफा मुजफ्फर जी की बातचीत।
जी एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान कबोब जी। आपको पता ही है कि नान कबोब जो है उनकी बहुत सारी अब लोकेशंस खुल गई हैं, बहुत ही जबरदस्त खाना बनाते हैं और हर कोई एंजॉय कर सकता है इसको, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। और ये हैं अब जो इनकी नई लोकेशन है 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा में, और इनका नंबर जो है वो फिल्मी 3 बस ये F3 क्या है भाई, आपको हमने बड़े खत भेजे हैं कि एक्सप्लेन करो ये F3 क्या है, ये F3 आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो बस ये फिल्मी 3 है जी। और इनका हाँ जो करना कर लो। अच्छा फोन नंबर है जी 4162858191, 4162858191। और जनाब राजा बादशाह जी आपको पता ही है वो हमेशा कहते हैं जी कि दो गाड़ियां और एक घर है तो आप $1,775 बचा सकते हैं, लेकिन हर किसी का कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, तो अगर आपको और भी पैसे बचाने हैं तो आप राजा बादशाह जी से के साथ जाके बात करें। ऑल स्टेट के एजेक्स एजेंसी के अंदर ये होते हैं और इनका नंबर है 6472903773, 6472903773। ठीक है जी, ओके। अच्छा जनाब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने कहा जी कि हमने डिसाइड किया है कि 1.1 मिलियन इलीगल फॉरेनर्स लिविंग हियर जो है वो उनको किया जाएगा, यानी उन्होंने आज कहा है कि एविक्शन ऑफ एलियंस यानी वो लोग जो कि इलीगल रेजिडेंट्स हैं उनको तीन फेजेस में से पाकिस्तान में से निकाला जाएगा। फर्स्ट फेज में से जो इलीगल रेजिडेंट्स हैं उनको एक्सपेल किया जाएगा, सेकंड और थर्ड फेजेस में जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स हैं और उनके पास रेजिडेंस ऑफ उनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड्स है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। वो कहते हैं जी ये बहुत सारे जो इलीगल रेजिडेंट्स और फॉरेनर्स जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। इलीगल अफगान सिटीजन जो हैं ये दे आर इन्वॉल्वड इन फंडिंग facilitating and you know helping and smuggling terrorists जो हैं वो 700,000 अफगान्स जो हैं उन्होंने अभी तक अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो है वो रिन्यू नहीं किया है पाकिस्तान में। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा जी कि हमने पूरा एक प्लान बनाया है इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड द अफगान गवर्नमेंट, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इनको जो है डायरेक्ट किया है कि ये सब लोगों का ये जो अफगान्स और बाकी इलीगल जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए और जो विदाउट परमिट्स हैं विदाउट ये कार्ड्स हैं उन सबके एक लिस्ट बनाई जाए। और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री को कहा है कि इन तमाम लोगों को बिठा के जो भी पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में उनको उठा के और ये बॉर्डर के ऊपर लेकर आए ताकि ये अपने मुल्क वापस अफगानिस्तान में जा सकें, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी रिस्क इन पाकिस्तान व्हिच इज वेरी राइट। ये इनको काम बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था, अव्वल तो उनको आने ही नहीं देना चाहिए था इन लोगों को अपने मुल्क में, बहरहाल अब आ गए हैं तो अब निकालना उनका जरूरी है भाई। पहले तो वॉर हो रही थी ना, आप कह रहे थे वॉर हो रही है हम नहीं जा सकते, अब तो भाई वॉर ठंडी हो गई, जाओ भाई छोड़ो पाकिस्तान का खेड़ा। अच्छा जी FIA जो है उसने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि आपने ये जो फैसला लिया था कि इमरान खान साहब का इन कैमरा सेशन होएगा, ये जो उन्होंने बेल प्ली डाली थी कि जो साइफर केस में जो हियरिंग होएगी वो इन कैमरा होनी चाहिए, तो उसके ऊपर इन्होंने FIA ने कहा है कि ये जो अगर आप ऐसा ट्रायल करेंगे तो इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे जो दोस्त हैं और अदर स्टेट्स जो हैं वो इसमें नाराज हो जाएंगे और ये पाकिस्तान जो है उसके टाइज खराब हो जाएंगे। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर जो थे वो कह रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप हमारी भी प्लीज जरा सुन लें FIA की। तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो फारूक साहब हैं उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है आप अपना भी प्ली लेकर आए कि आप क्यों नहीं चाह रहे कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि उनका साइफर का केस इन कैमरा सुना जाए तो हम सुने। तो खावर साहब ने कहा जी कि अंडर ऑफिशियल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये ट्रायल जो है इसको पब्लिक नहीं बनाया जा सकता, और इसीलिए हमने कोर्ट को मूव किया था और हमने कहा था कि इसको ट्रायल कोर्ट के अंदर आप भेजें। तो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फारूक साहब ने कहा कि जिस वक्त कोर्ट अपना वर्डिक्ट लिखेगी इस बेल प्ली के ऊपर, तो उस वक्त तो सारी की सारी चीजें पब्लिक हो ही जाएंगी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम इन कैमरा सेशन जो है वो होल्ड करें। तो FIA ने कहा जी कि नहीं, आप ऐसा ना करें, हमारी रिजर्वेशंस हैं। तो अब जैसे जैसे केस जनाब आगे चलेगा तो पता चलेगा इन कैमरा होता है कि नहीं होता है। लाहौर हाईकोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है जी, उसने कहा है जी कि अवामी मुस्लिम लीग के जो चीफ हैं शेख रशीद अहमद, उनको फौरन से पहले सिटी पुलिस को कहा है कि रिकवर करें और उनको कोर्ट के सामने लेकर आए। जो सरदार अब्दुल राजिक खान जो कि इनके लॉयर हैं शेख रशीद अहमद के, और इनके जो नेफ्यू हैं शेख शाकिर और हाउस वर्कर जो थे शेख इमरान, उन्होंने पहले कहा था जी कि इनको जो है पकड़ के लेकर गए हैं, और उसके फौरन ही बाद ये हुआ था कि इनके नेफ्यू शाकिर और जो होम वर्कर है इमरान, उन दोनों को भी पकड़ कर लेकर चले गए थे। जिस वक्त इंक्वायर किया गया इनके जो ये वकील है राजिक साहब ने, तो सिटी पुलिस ने जो है एक सबमिट किया सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद हमदानी की एक रिपोर्ट कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि ये सब के सब लोग ना तो हमारी कस्टडी में है, ना तो रावलपिंडी पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। जो राजिक साहब हैं उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने मेरे क्लाइंट को जो है वो किया है अरेस्ट। तो कोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया कि भाई फौरन उनको लोकेट करें और उनको रिकवर करें और उनको सामने लेकर आए। आज पुलिस ने फिर जी आके बताया कोर्ट में कि जी उनके जो नेफ्यू हैं शाकिर साहब और जो इमरान उनका जो हाउस वर्कर था, उसको तो जो है हमने जो है वो घर वापस आ गए हैं। तो अब अगर वो घर वापस आ गए हैं तो भाई शेख रशीद अहमद साहब कहां पे गायब हैं, उनको क्यों किया गया? आपको पता ही, हमने आपको रिपोर्ट सुनाई थी कि उनको उनकी लाल हवेली से उठाकर ले गए थे और कहा था कि ये लाल हवेली जो है वो बिल्कुल इलीगली इनके कब्जे में है, जबकि उन्होंने कहा था कि सारे पेपर्स जो है मेरे पास हैं। और इसी तरह इनका जो नेफ्यू शाकिर है, उसने भी कहा था कि सारे पेपर्स हैं, लेकिन फिर भी सबको जाहिर है कि उसको उसकी वजह यह है कि शेख रशीद अहमद साहब जरा इमरान खान के हक में बोलते रहे हैं, तो अब वो जो जो इमरान खान के हक में बोल रहा है उसको दीवार के साथ लगाना ही है उन्होंने। फॉर्मर PPP सेनेटर जो है मुस्तफा नवाज खोकर साहब, मैंने आपको बताया था फ्राइडे को भी कि मुस्तफा नवाज खोकर और मुफ्ता इस्माइल साहब और शायद खाकान अब्बासी सोच रहे हैं कि एक नई पार्टी बनाएं। तो पहले तो जब मुस्तफा खोकर साहब से पूछा गया कि क्या वाकई ऐसी पार्टी बनाने का आपका इरादा है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, लेकिन वीकेंड के ऊपर एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा था जी कि अब हमें लग रहा है कि एक और पार्टी हमको लाने की जरूरत है। तो जब उनसे पूछा गया कि वो पार्टी अब कब फॉर्म कर रहे हैं और उसकी अनाउंसमेंट कब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो इनसे लोग आज जो हैं बड़े हैरान हुए कि जब जिस वक्त इन्होंने कहा जी कि मैं एक और भी जो प्रपोज पार्टी फॉर्मेशन है वो हम सामने लेकर आ सकते हैं, लोगों ने इनको कहा था कि आप इलेक्शंस के बाद लाएं, लेकिन इन्होंने खोकर साहब ने कहा नहीं, हम इलेक्शन से पहले ही ये पार्टी लेकर आना चाहते हैं। तो लोगों ने हैरत से इनसे पूछा कि भाई जो पहली भी दो पार्टीज आई हैं, एक तो जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और फिर जो परवेज खटक साहब की PTI पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उनके बारे में तो जितने भी वो डायसेंटिंग जो वॉइस थी उनको अपने साथ उन्होंने जमा करने की कोशिश की है, लेकिन वो हो नहीं सके, तो आपकी पार्टी का जो है वो क्या जो है वो फ्यूचर हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि हम अब जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो आने वाले दिनों में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो बड़ी चैलेंजिंग है, तो हम आपको बताएंगे कि अब हम आगे जाके क्या करेंगे। बीबी जरदारी साहब जो हैं जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस चाहती है, और कोई भी नहीं चाहता है कि इलेक्शंस जो हैं इस मुल्क में कराए जाएं। भाई जानिए आप कैसे कह रहे हैं, PTI वाले तो कब से स्यापा डाल के बैठे हुए हैं कि भाई इलेक्शंस करवाओ। वो कहते हैं जी कि लेकिन अपेरेंटली लग रहा था कि ये PDM की जो इनकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके ऊपर जरा हिट कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि कोई भी जो था इसके अंदर राजी नहीं हो रहा है, और कभी वो कहते हैं जी कि वेदर अच्छा नहीं, जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी, और कभी वो कहते हैं जी कि अभी तक तो डीलिमिटेशंस नहीं हुए हैं, तो कोई ना कोई बहाना दे रहे हैं। सिर्फ PPP कह रही है कि कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि अब डीलिमिटेशन भी हो गई है और बाकी के भी सारे मामला सेटल होते जा रहे हैं, तो इलेक्शंस अपने जो हैं वक्त पे कराएं। इसके अलावा उन्होंने अपेरेंटली लग ऐसे रहा था कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे JUIF के अमीर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि जी बलोचिस्तान और KP में जनवरी के महीने में जो है बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो ये सही मौसम नहीं है, खासतौर पे चित्राल और खुजदार में और कुछ और इलाकों में बलोचिस्तान और KP के, तो इलेक्शंस जो है वो ना कराए जाएं। इससे पहले ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि जी हम इलेक्शंस तो करवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। उसी के ऊपर जो है बिलावल साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हम पब्लिक के आगे जाने से डरते नहीं हैं, हम जो हैं आपको पता चल ही जाएगा कि कौन अपने आप को अकाउंटेबल समझता है पोल्स में जाने से, हम पब्लिक के सामने जाने को, उनके सवालों को फेस करने से हम डरते नहीं हैं, हम जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वोटर्स जो हैं वो हमें बताएं कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमें जवाब दें और जो इलेक्शन डेट है उस वक्त तक हम फाइट करते रहेंगे जब तक ये नहीं आएगी, यानी कि इलेक्शन डेट नहीं आएगी उस वक्त तक हम आराम से नहीं बैठेंगे और जब इलेक्शन का वक्त पास आएगा तो उस वक्त फिर हम अपनी जो आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो है वो रोल आउट करेंगे। तो ये बातें जनाब आज इन्होंने की। इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं जी सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने कहा जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने कहा जी कि हर वो सिक्योरिटी पर्सनल जो कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उसको अरेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत ज्यादा मैसिव क्रैकडाउन हमने इंटरिम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इट इज अगेंस्ट स्मगलर्स, होर्डर्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जो यहां पर रह रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को जो है क्रिप करना है। इससे पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अथॉरिटीज को कहा था कि ये जो कोई भी शुगर की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, यूरिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और दूसरी जो आइटम्स ऑफ डेली यूज की स्मगलिंग कर रहा है इनके खिलाफ आप एक्शन लें। आज बुगटी साहब ने बात करते हुए कहा जी कि ये अगर मैं कहूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी डेफिनेटली उनकी सहमति के बगैर जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो ट्रक्स हैं बड़े बड़े ये कैसे गुजर सकते हैं और ये चीजें कैसे क्रॉस बॉर्डर जो हैं वो जा सकती हैं। तो आर्मी जो है उसका ये तरीका नहीं होता है कि वो बहुत सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में ले आए, पब्लिक डोमेन में वो बहुत सारी चीजें और पब्लिक नॉलेज में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं क्योंकि आर्मी अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्वाइटली करती है। लेकिन मैं आपको इसका बता रहा हूं, इससे पहले जो टेररिज्म भी जो बहुत ज्यादा मुल्क में बढ़ रही है उसके ऊपर भी बुगटी साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हमने एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स जो है वो की हैं और बहुत सारी अब आप आने वाले दिनों में चेंजेस देखेंगे कि किस तरह से टेररिज्म के खिलाफ काम किया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर जी दिल्ली में आज रामलीला मैदान में हजारों ही जो लोग हैं वो जमा हुए हुए थे और वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की जो नेशनल पेंशन स्कीम अभी आई है और वो कह रहे हैं कि जो पुरानी जो स्कीम थी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसको रेस्टोर किया जाए, ये नई जो आप पेंशन स्कीम लेकर आ रहे हैं हम इसको नहीं मान रहे हैं। इसके अंदर बेशुमार जो हैं 20 स्टेट्स के लोग आए हुए थे और उन्होंने इसको पेंशन शंगनाथ रैली का नाम दिया और उन्होंने कहा जी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके अंडर ऑर्गेनाइज ये जो रैली की गई है उसमें आप रिस्टोर करें, जो कि 4 से 5 इंडियन स्टेट्स में रिस्टोर की भी जा चुकी है तो बाकी के मुल्क में ये क्यों नहीं किया जा रहा है। वो कहते हैं जी कि वो जो पुराना वाला जो सिस्टम था उसके अंदर जो लोगों की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी और जो उनके टाइम पे जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो उनके पैसे होते थे उस मुताबिक उनको जो है पेंशन दी जाती थी, लेकिन जो नई स्कीम आई है उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है और रिटर्न जो है मार्केट बेस्ड होते हैं, फिक्स सम के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आएंगी क्योंकि इन्फ्लेशन के होते हुए ऊपर नीचे अगर चीजें जाएंगी तो एक जो पेंशन लेने वाला आदमी है वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसीलिए फिक्स्ड इनकम के ऊपर ही जो उसकी सैलरी थी उसके ऊपर जैसे वो ओल्ड टाइम में पेंशन मिलती थी वैसा ही गवर्नमेंट को फिर से वापस लाने की जरूरत है। सीबीआई ने जी 4 जो कुकी कम्युनिटी के लोग थे उनको पकड़ा था और मणिपुर में और उसके बाद जी बहुत ज्यादा वहां पे जो हैं जो अरेस्ट किए थे इन्होंने के जो 2 स्टूडेंट्स गायब हो गए थे जुलाई में उस सिलसिले में, तो उस पे कुकी जो हैं उन्होंने बेशुमार ह्यूज प्रोटेस्ट जो हैं आज किए हैं और कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है चूरा चंद्रपुर का जो एरिया है। इसके अलावा जो NIA थी उसने कहा था जी कि ये जो 2 लोग हैं ये तो जो भी सीबीआई उनके साथ कर रही है, इसके अलावा उन्होंने फिगर आउट किया था कि एक और कुकी जो आदमी है वो भी ट्रांसनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो चला रहा था जिसकी वजह से मणिपुर के अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो कुकी कम्युनिटी है वो कहती है कि NIA और CBI के ये दोनों जो हैं वो तरीकेकार गलत हैं और वो गलत तरीके से इनको पकड़ रहे हैं, लेकिन NIA ने कहा था कि ये लोग म्यांमार और बांग्लादेश से जो है फंड्स ला रहे हैं, आर्म्स ला रहे हैं, एम्यूनिशन ला रहे हैं और हार्डवेयर जो है टेररिस्टों को दे रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं ब्यूरन उन्होंने भी कहा था कि ये जो स्टूडेंट्स को जिन्होंने गुवाहाटी में मारा है उनको जो है वो सजा दी जाएगी और उनका अरेस्ट जो है चूरन चंद्रपुर से हुआ है, लेकिन यहां पर कुकी कम्युनिटी ने कहा कि ये गलत तरीके से हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उन्होंने कहा NIA और CBI के फौरन 48 आवर्स के बीच हमारे सारे लोगों को छोड़ें, तो उस वजह से आज ह्यूज किस्म की वो यहां पे जो है रही। मोदी जी जो हैं जी उन्होंने आज जो ऑपोजिशन है उसको बहुत ज्यादा लताड़ा और उन्होंने कहा जी पिछले 60 साल से ये जो अपोजिशन थी, खासतौर पे कांग्रेस जो थी, ये रूल कर रही थी, तो इन्होंने तीर क्या मारा है, इन्होंने वो प्रोग्रेस तो लाई नहीं है जो प्रोग्रेस हम लेकर आए हैं। तो अगर ये चाहते हैं तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब ये जो है सारे के सारे जो गरीब लोग हैं उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं और ये करना कुछ भी नहीं चाहते हैं, और ये जलते हैं। जो डेवलपमेंट मैं लेकर आया हूं हिंदुस्तान में, उससे ये जलते हैं, ये हेटर्स हैं, ये चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान का जिस लेवल पे मैं लेकर गया हूं जो स्टेटस, उस स्टेटस को ये मेंटेन रखा जाए। आपको पता ही है कि सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है और वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का फ्यूचर है, लेकिन ये लोग जो है पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये जो है कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट कुर्सी नहीं, इंडिया के जो है उसके लिए प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो उन्होंने आज मध्य प्रदेश में आज स्पीच कर रहे थे और आपको पता ही है कि वहां पे इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो एंटी डेवलपमेंट पीपल हैं और जो हिंदुस्तान के हक में नहीं है, इन सब के खिलाफ आपको खड़ा होने की जरूरत है और आप जो है बीजेपी का साथ दें, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रॉमिसेस तो करते हैं लेकिन ये सिर्फ पावर में आना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई भी जो है मकसद नहीं होता है। सलमान खान साहब की एक जी वीडियो सामने आई है और उस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक पार्टी के अंदर जो है ये डांस कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर लोगों का बहुत सारा रिएक्शन आया है। ये ब्लैक और सिल्वर ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है और ये अपने दबंग का जो गाना था 2010 का हमका पीनी है उस पर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज एक्स के ऊपर, जो कि पहले ट्विटर था, उसमें कहा कि हमें सल्लू भाई की कुछ हालत ठीक नहीं लग रही है, इनकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ ने कहा हो सकता है कि सेहत तो ठीक हो लेकिन अब इनकी एज नजर आने लगी है। बहरहाल एक ने कहा जी कि मुझे, मैं बड़ा बैड फील इनके लिए कर रहा हूं। एक और ने कहा जी कि हम तो सलमान को जानते थे उसके फिटनेस के काम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसने फिटनेस भी छोड़ दिया, तो इसलिए जो है वो बड़ा बीमार सा लग रहा है। माहिरा खान ने जनाब आज उनकी शादी ने काफी दुनिया के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी न्यूज बनाई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं सलीम करीम, उनके साथ इन्होंने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल बूरबान में एक बहुत ही प्राइवेट जो सेरेमनी थी उसके अंदर इन्होंने शादी की और किसी को यहां पर तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं थी। फिर उसके बाद जो है इनके भाई हिसान खान, इनके जो मैनेजर हैं अनुशे तलहा और इनके जो फोटोग्राफर थे इज्जे मलिक, उन्होंने कुछ तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पे डाली तो लोगों को पता चला। आज इन्होंने जो व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था वो इनके बहुत ही क्लोज डिजाइनर फ्रेंड जो है फराज मनान, उन्होंने उनका पहना हुआ था। इन्होंने, इनकी पहले भी शादी हो चुकी है अली अस्करी से 2007 में, लेकिन 2015 में इनकी डिवोर्स हो गई थी, उनसे इनका एक बेटा है अजलान। तो अब इन्होंने दूसरी बार शादी की है। सलीम जो है सीईओ हैं ऑफ सिम पैसा के, ये बहुत ही मल्टी मिलियन डॉलर स्टार्टअप है जो कि एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को टू मेक देयर पेमेंट्स डायरेक्टली थ्रू सिम कार्ड्स, और बहुत ही इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले 2017 में एक टीवी ऐप तंपत टीवी जो था उसके लॉन्च के ऊपर हुई थी, एंड देन इट टर्न्ड इनटू अ जो है वो लव स्टोरी, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक किस्म की इनकी वो थी। नायला कियानी, पाकिस्तान की मोस्ट सक्सेसफुल वुमन माउंटेनियर जो है, उन्होंने जनाब आज दुनिया की 6th हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है चो ओयू, उसको भी सर किया है अपनी टीम के साथ। इनकी टीम के अंदर पाकिस्तान के क्लाइंबर शिरबाज खान भी थे और ये जो है इन्होंने अब 10 जो है, ये शी इज द ओनली पाकिस्तानी वुमन जिसने के 10 8000ers ये जो पीक्स हैं इनको क्लाइम किया है। सबसे पहले इन्होंने किया था गशर ब्रह्म 2 को 2021 में, फिर K2 को, फिर गशर ब्रह्म 1 को 2021 में, और अब अप्रैल से लेके अब तक ये जो है अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट, लोटसे, नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक, मानना सलू, इनको क्लाइम कर चुकी हैं, यानी कि 6 महीनों में 7 पीक्स कर चुकी हैं। तो आज इनको लोगों ने बहुत मुबारक दी। पाकिस्तान हॉकी जो है जी, उसका बड़ा सोचा जा रहा था कि शायद वो एशियन गेम्स जो कि चाइना में यांगजाऊ में हो रहे हैं उसमें सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जापान ने उनको 3-2 से हराया। उसके बाद जो है अब ये सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच सकेंगे। आज इनका मुकाबला जो था जब जापान से हुआ तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। अब ये फेस करेंगे थर्ड प्लेस जो होगा यहां पे पूल बी में फॉर 5th और 6th पोजीशन के लिए, और ये मैच होगा अक्टूबर 6 को। एंड जनाब एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास। She will join the elite list of commentators and presenters for ICC World Cup 2023 जो कि इंडिया के अंदर अब अक्टूबर 5th से हो रहा है. अपने एक्स के ऊपर जो यानी कि अपने ट्विटर अकाउंट पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि शी इज रियली इंट्रीग टू बी इन इंडिया क्योंकि इंडिया के बारे में ये बहुत कुछ सुनती थी. वो कहते हैं हमारा कल्चरल एक्सचेंज बहुत क्योंकि कम हो गया है हमारे स्ट्रेन टाइज के बारे में, हालांकि हमारा बहुत कुछ जो है वो सिमिलर है. तो मैं बड़ी इंट्रीग थी वहां पे जाने के लिए एंड आई हैव गॉट दिस चांस. मुझे पता है कि जो हमारे प्लेयर्स थे ऑफ द फील्ड तो उनका बड़ा प्यार मोहब्बत रहता था, वो सेम लैंग्वेज बोलते थे, उनका लव फॉर आर्ट्स एंड जो था वो भी सेम था. तो अब ये जो पीपल ऑफ 1 बिलियन कंट्री ऑफ 1 बिलियन पीपल जो है जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का कंटेंट क्रिएट करता है और एक्सपर्टीज अपनी शो करता है, वहां पे मैं जा रही हूं टू लर्न द बेस्ट इन दिस बिजनेस. सो जर्नी अवे फ्रॉम होम ऑफ 6 वीक्स. तो 6 वीक्स ये हिंदुस्तान में रहेंगी एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी.
शी इज हैप्पी तो हम भी हैप्पी.
हाँ जी
तुझी हैप्पी तो मैं भी हैप्पी.
हाँ जी मैं तो नाम ही अपना हैप्पी रखने
हैप्पी रख लेना.
आहो शाजिया तो खत्म ही कर देना है. मैं अपना नाम कर लेना
हैप्पी
हैप्पी मलिक कर लेना है मैं अपना नाम
शाजिया हैप्पी मलिक.
फिर मेरे पे फिल्में बनेंगी. हैप्पी भाग गई थी.
हैप्पी होके भाग गई.
वो फिल्म है ना हैप्पी भाग गई थी.
अच्छा तो लाओ भाई
नेक्स्ट फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म मेरे पे बनेगी.
आप पे अलाव है नाम चेंज कर ले. हाँ, भागना नहीं है.
भागना नहीं है. हाँ, भागने हाँ, के कोई चांस नहीं है. दरवाजे बंद कर दिए हमने.
मैंने कहा कि शाजिया हैप्पी भागने की कोशिश नाकाम.
मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करके मेरी किश्तियां जला दी हैं.
किश्तियां जला दी. किश्तियां जल गई हैं. 6:20:48 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं. सब 6478724900 हमारा फोन नंबर है. क्या नंबर है ये, इसको डायल करें. आप जहां पर भी हैं आप इस नंबर को डायल करें एंड वी आर विथ यू 24 आवर्स. ये रेडियो जो है 770 AM आप 24 आवर्स सुन सकते हैं. 6478724900 एंड ई आवाज टीवी बड़ा आसान तरीका है. eawaz.com पे जाइए. आपके पास टेलीफोन भी है, आपके पास लैपटॉप भी है. eawaz.com पे जाइए. वहां पर जो बटन है वॉच लाइव का, उस वॉच लाइव पे जाके आप हमें देख भी सकते हैं. तो क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये, इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान की एडवोकेट हाई कोर्ट मोहतरमा मरिया खान बलोच आज बात कर रही हैं आरफा मुजफ्फर जी से. 6:30 आज 6:30 आप ये सुन सकेंगे, देख सकेंगे. शी इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंसाफ लॉयर्स फोरम लाहौर. इनकी बातचीत वेरी इंटरेस्टिंग बातचीत इनकी आरफा मुजफ्फर जी से. सुनना नहीं भूलिए, देखना नहीं भूलिए. 6:30 आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं. इस सैटरडे को क्या कर रहे हैं आप? इस सैटरडे को भाई आपको हम बता रहे हैं खैबर टू मेहरान जर्नी थ्रू पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान. अक्टूबर 7th है, सैटरडे का दिन है. सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा जो लोकेटेड है 300 सिटी सेंटर ड्राइव इन मिसिसागा. शहजाद रॉय आएंगे, आपको परफॉर्म करेंगे लाइव. देयर इज नो टिकट टू इट, एब्सोल्युटली फ्री एंड देयर इज नो पार्किंग टिकट. पार्किंग भी आपको फ्री मिलेगी साहब. और क्या चाहिए आपको? और वहां पर खाने पीने के पैसे चाहिए आपको?
मतलब सारा कुछ ही मुफ्ते विच तो नहीं चल सकता ना जी? तो जवानी कोई खर्चकार ही लोन तुसी.
तो इंतहा स्टॉल्स होंगे पाकिस्तान के डिफरेंट जो खाने हैं वो सारों के स्टॉल्स होंगे वहां पर. आइए फन फूड एंड एंटरटेनमेंट. ये प्रेजेंटेशन है आमिर शमसी एंड यूनिवर्सल प्रमोशंस की. फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप आमिर शमसी को कॉल कर सकते हैं 4166627861.
और जनाब हम शुरू कर रहे हैं 5th ऑफ अक्टूबर से जब आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है उसकी हम स्पेशल सेगमेंट चलाएंगे. हर रोज हम जो है 15 to 20 मिनट्स आपसे बात करेंगे, आपको सारी डिटेल्स देंगे. उसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कभी कभी क्रिकेट के. माजिद भाई
कभी कभी.
हाँ कभी कभी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं.
फ्रीज हो जाएगी रोजा दे रहे हैं.
हाँ रोज रोज इतने बड़े लोग जो है वो नहीं आ सकते, ठीक है जी. तो कभी कभी आएंगे और वो भी आपको अंदर की खरवें दिया करेंगे, तो वो हम आपके साथ करेंगे. अगर आप हमारे साथ स्पॉन्सरशिप्स करना चाहते हैं इस स्पेशल क्रिकेट सेगमेंट की,
अगर क्यों करें ये,
संपर्क करें मेरे साथ.
आपका ही बहुत फायदा है
क्योंकि बेतहाशा इसमें प्रमोशन मिलने वाली है.
हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप आइए आके इसमें स्पॉन्सरशिप दीजिए एंड रेडियो और टीवी पे आपके नाम बार बार दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि आप हमारे स्पॉन्सर्स हैं. एंड ऑफकोर्स एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट क्रिकेट.
यस
अक्टूबर 5th का आ गई बस.
आई खड़ी है, होती है,
आई खड़ी,
ये खड़ी है,
ये खड़ी है, ये खड़ी है, लाल परी है ना जी, हाँ
जी?
अब हमारी ग्रीन परी, हमारी हरी परी,
हमारी हरी परी,
हरी परी, हमारी हरी परी यहाँ खड़ी, क्योंकि इवेंचुअली कब तो
इंशाल्लाह हमारे पास आएगा,
इंशाल्लाह कब तो हमारा ही है ना,
हाँ हाँ,
उस कप पे तो नाम लिख दिया ऑलरेडी, मैंने सुना है कि उस पर पाकिस्तान का नाम लिख दिया गया।
ओ वाह जी वाह, क्या
ये अंदर की बात बता रहा हूँ,
अंदर की खबरें हैं, अच्छा अच्छा,
अंदर की खबरें हैं कि इस पे ऑलरेडी पाकिस्तान ट्रॉफी पे पाकिस्तान का नाम लिख दिया गया।
क्या बात है,
है ना, ये आप कभी न्यूज सुनी है कभी?
नहीं नहीं नहीं, पहली बार
अंदर की बात सुना रहा हूँ।
वैसे मैं सोचती हूँ अगर मैं आपके साथ काम ना कर रही होती तो मेरी जिंदगी कितनी बेकार जाती,
एकदम बेकार थी,
हाँ
बगैर कार के,
हाँ बिल्कुल बगैर कार के। आप मुझे ये जो है ना ये कार वाली खबरें दे रहे हैं, वाह जी वाह, मेरी तो जिंदगी सवर गई मजद भाई, बिल्कुल
है ना,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए साहब यही आपकी छुट्टी करता हूँ मैं,
बिल्कुल
आप खुश रहें, आबाद रहें
जी जी,
मगर एक शर्त पे छोड़ रहा हूँ आपको
कि कल आपने छुट्टी नहीं करनी,
कि कल आपने आना है।
अच्छा जी अच्छा, चलो ठीक है, देखिए माजी भाई मैंने आपको बहुत प्यार दिखा दिया है, महीने के आखिर में मैंने छुट्टी नहीं की, लेकिन इस महीने में एक छुट्टी छुट्टी तब मेरी बनती है,
अगर बीमार भी होगी तो दूसरी तरीके से छुट्टी करेंगे,
हाँ दूसरी तरीके से करेंगे ना महेश भाई, ये देखो ना
ये तो नाइंसाफी है ना।
अब देखो ना महीना गुजर गया, मैं बीमार ही नहीं हुई महेश भाई, तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब मेरी एक छुट्टी तो उस सितंबर ने खा ली,
तो मुझे इत्तला मिली है ऊपर से,
अच्छा अच्छा
मुझे ऊपर से इत्तला मिली है बीमार होती नहीं है,
हाँ
मगर एक छुट्टी करनी है,
हाँ छुट्टी करनी है, नहीं वो नहीं नहीं महेश भाई देखें थोड़ा सा बंदा ट्रस्ट भी करता है, नहीं मैं हमेशा महीने के आखिर में बीमार हो जाती हूँ, लेकिन इस दफा मैं हुई नहीं हूँ, सितंबर के महीने ने बड़ी बेईमानी मेरे साथ की है, मेरी एक छुट्टी खा गया है, लिहाजा मैं अक्टूबर में वो छुट्टी करूंगी, ठीक है
आप
फिर कहेंगे माज भाई डोंट लिसन टू हर,
आखिर में या महीने के शुरू में जब ऑफ होंगी उस वक्त बताएंगे, यहाँ वैसे ऑफ होना एक और चीज को भी कहते हैं, मगर वो छह बजकर 26 मिनट और 17 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं, वेरी नाइस टाइम विद यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस, कीप लिसनिंग कीप वॉचिंग 6478724900 रेडियो के लिए, ई आवाज टीवी टीवी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, एंड ऐसे ही हम 24 आवर्स आपके साथ हैं,
थैंक यू वेरी मच मदर भाई,
इनके साथ नहीं है, इनके साथ एक घंटे काफी है, इनके साथ एक घंटा काफी है, अल्लाह हाफिज जी,
खुदा हाफिज मदर भाई,
बाकी की बातें कर, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, मैं सब के लिए ये दुआ मांगता हूँ, करम
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. آج کی اس محفل کو رونق بخش رہی ہیں پاکستان کی ایک مایا ناز لوئر. آپ انصاف لوئرز فورم کی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور بلوچستان یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی انہوں نے. ماریا خان بلوچ صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ماریا خان, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ.
اینڈ یہاں پر پیغام ہے کہ انٹرنیشنلی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اور مسلمانوں میں خواتین کو بہت ہی تنگی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے, مگر الحمدللہ پاکستان کی خواتین پرفارمنگ سو گڈ آن آل پلیٹ فارمز. آپ انصاف لوئر فورم کی ممبر بھی ہیں, کچھ بتائیں گی واٹ از انصاف لوئر فورم؟
انصاف لوئر فورم جی پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی انصاف لوئر فورم انہوں نے بنایا ہوا ہے. جتنے بھی ہمارے وکلا ہیں جو انصاف لوئر فورمز کے, جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, تو ان کے لیے ایک باڈی آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کا نام جو ہے وہ پاکستان لوئر فورم جو ہے اس کے نام سے رکھا گیا ہے. جو باقاعدہ طور پر جو اب یہ جو واقعات آپ کے سامنے 9 مئی کا ہوا ہے, اسی انسیڈنٹ میں وہ سب جو ہیں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں.
بہت شکریہ. زندگی میں ایک موقع تھا کہ جس میں میں نے لائرز کو یکجا دیکھا تھا, اور وہ ہمارے چیف جسٹس پرویز مشرف کے دور میں. ظاہر ہے میں اور میرے جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ آپ وکلا کے تجزیے کے اوپر انحصار کرتے ہیں, کیس کو دیکھتے ہیں, لوگ اپنے لحاظ سے ججمنٹ بھی کرتے ہیں, لوگ اپنے لحاظ سے اس کو انالائز بھی کرتے ہیں. مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سٹیج تھی کہ جب لائرز نے, قانون کو سمجھنے والوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ ایون اس وقت کی پرویز مشرف کی گورنمنٹ کو اپنے تمام کے تمام فیصلوں کو واپس لینا پڑا تھا. اس وقت ماں باپ میں ڈویژن ہے, بچوں میں ڈویژن ہے, بھائی بھائی میں ڈویژن ہے. جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ اپنا اپنا تجزیہ بیان کر رہے ہیں جس میں یہ جو گیپس ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. What do you say کہ کیا لائرز جو ان کیسز کو فالو کر رہے ہیں, ڈو دے فیل کہ پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس کا فقدان ہے, تو کیوں لائرز ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے؟ بیکاز لائرز کین چینج فیٹ آف پاکستان.
جی لائرز نے اب اپنی موومنٹس جو ہے اس پہ میڈم اسٹارٹ کر دی ہیں. ہماری ہر ویکلی طور پر جو ہے ایک موومنٹ ہم چلا رہے ہیں. باقاعدہ طور پر ہمارا ہاؤس اجلاس ہوتا ہے, اس کے بعد ہماری ایک ریلی ہوتی ہے جو ہم قانون کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ کنٹینیو ہے. اور یہ فورم ہے کہ ہر ویک میں ہم آئی, ابھی یہ پہلی کوشش ہے کہ ہم سارے وکلا جو ہیں وہ سب وہاں پر, ہماری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم وہاں سے ایک ریلی موو کرتے ہیں. तो हमारे माशाल्लाह से जितने भी हैं ये हाईलाइट भी हो रही है चीजें, आप अगर मीडिया पे इसको देखें तो ये तो इस वक्त जितने भी लॉयर हैं, इस वक्त हम बात किसी एक पार्टी की नहीं करते, इस वक्त बात हमारी एक प्रॉपर जो आ चुकी है वो कानून के अकॉर्डिंग चलने की है, रूल ऑफ लॉ की बात आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोस्टली जितने भी लॉयर्स इसको साथ अटैच हैं वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं और हमारा कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है जब तक ये कंटिन्यू रहेगा।
आपने भी कहा कि हमारे साथ जो लॉयर्स हैं, मेरा यही कंसर्न था कि कानून को समझने वाले अगर ज्यादती हो रही है तो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है, क्यों एक इकट्ठी आवाज नहीं बन रहे? तो क्या आपके फोरम से ऐसे लॉयर्स भी हैं जो इख्तलाफ रखते हैं और वो इसको सपोर्ट नहीं करना चाहते?
जी, इसमें मैंने बात जो हमारे ये वर्ड यूज किया इसका मतलब है जिसने इस जो इशू है उसके खिलाफ आवाज उठाई है, ये मैंने उनकी बात की है। तो जैसे हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि जी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए और हम बुकला को एक पैनल पे जो है वो इकट्ठे होना चाहिए, तो इसमें हमारे मोस्टली लॉयर्स जितने भी हमारे लाहौर से या पाकिस्तान से हैं, हमारी एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी एक हमारा कन्वेंशन हुई थी जिसमें तमाम वकला ने ये एज लिया था कि हम कानून के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे और रूल ऑफ लॉ पे बात करेंगे, जहां रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट बात आएगी तो हम सब एक ही पैनल पे खड़े होंगे।
बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, पाकिस्तान में जो टोटल वकला हैं, एक बॉडी है बॉडी ऑफ द लॉयर्स, इसमें अराउंड 22 मेंबर्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आई डोंट नो ये जो पोलराइजेशन है ये हमें किस सिम्त में लेके जाएगी। 9 मई के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ और 9 मई पे जब हम मोहतरमा का जिक्र कर रहे हैं तो आपको भी 9 मई के हवाले से अरेस्ट किया था, 18 दिन आपने जेल में गुजारी थी। क्यों आपको अरेस्ट किया गया था? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि एक लॉयर जो कानून को जानता है, जो पाकिस्तान की कानून के मुताबिक चलता है, उसने ऐसा क्या गलत किया था कि आपको अरेस्ट भी किया गया और फिर 18 दिन जेल में भी रखा गया?
जी मैडम, सबसे पहले इसमें तो ये है कि उन्होंने मुझे जियो फेंसिंग के थ्रू, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर इधर चल रहा है वो जियो फेंसिंग का है, जियो फेंसिंग में आपका नंबर आ गया है और नंबर जिन जिन के आए हैं वो ट्रेस आउट हुए हैं उस एरियाज में जितने उसका लोकेटेड है वहां का, उसके थ्रू उनको वारंट इशू हो रहे हैं या उनको अरेस्ट किया जा रहा है विदाउट वारंट। और मेरा भी सेम यही केस था, मुझे जब अरेस्ट करके ले जाया गया और जो अरेस्ट करने आई उन्होंने तो मेरा जो एक हमारा वकला प्रोटेक्शन एक्ट है उसके भी मुनाफी वो लोग गए और उन्होंने मुझे ऐसे कोर्ट से यहाँ से पकड़ा और पकड़ के जल्दी में गाड़ी में बिठाया और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते, आप वकील हैं। मैंने कहा क्यों आपको शर्म आती है कि आपने एक वकील को अरेस्ट कर लिया है? ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने फेस की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत से इसका मुजाहरा भी किया, इसके टाइम भी गुजारा। लेकिन देखिए, एक वकील, मैं हमेशा कहती हूँ कि वकील हमारा काम है लोगों को जेल से बाहर निकालना और आपने एक वकील को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो ये हमारे राइट्स की वॉयलेशन ना सिर्फ हुई, हमारे वकला प्रोटेक्शन एक्ट की वॉयलेशन हुई बाकायदा। तो
ये तो अपनी अपनी बारी की बात है, और अगर आज एक पार्टी के वकील हैं और पार्टी की ग्राउंड पे चल रहे हैं आप, राधर देन कि आप अपनी पोजीशन को, अगर हम मैं अभी बल्कि देख रही थी कि अगर हम पंजाब का ही जिक्र करते हैं तो पंजाब में तकरीबन 100,000 लाइसेंस एडवोकेट्स हैं और बाकी प्रोविंसेस की भी आप बात कर लीजिएगा। 9 मई को आपको अरेस्ट किया गया और आप यूनिफॉर्म में थी, और जब भी चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे आर्मी है, चाहे एनी यूनिफॉर्म सर्विसेज को डायरेक्ट अगर टच किया जाता है तो यकीनन उसके लिए भी कवानीन होंगे। मुझे ये बताइएगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी इसके बारे में कहा जा रहा है, क्या वायलेशन हुई ह्यूमन राइट्स की? 9 मई को आपको अरेस्ट किया गया, क्या अदालत में जिस्मानी तशद्दुद टॉर्चर्स भी किए जा रहे हैं? कितनी खवातीन का अगर जिक्र किया जाए तो कितनी खवातीन है?
जी, इसमें सबसे पहले मैं एक बार कोट करूंगी कि इस वक्त जो अब तक 9 मई से अब तक जितनी भी हमारी पीटीआई की इस 9 मई के वाकया में जो खवातीन अरेस्ट हुई हैं उनकी तादाद 55 है, 55 है, और उसमें अब तक जितनी मोस्टली बेल आउट हो गई हैं अभी 17 इस वक्त फीमेल हैं जो जेल में। और इसमें ये आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर बड़ा पीक लेवल पे होता है. मैं खुद सब कुछ फेस करके आई हूँ, देख के आई हूँ सब. और इसमें यह है कि मेंटली तो फिर यह है कि आपको जब वहां दो बैरक है जेल में, एक है कैदियों का बैरक, एक है आइसोलेशन जिसे चकी कहते हैं. नॉर्मली पीटीआई की जो खवातीन है उनको चकी में रखा जाता है जहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है. मुझे वनडे वहां रखा गया था, फिर कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया गया. आप खुद सोचे जो कैदी एक जुर्म करके आए होते हैं, वो बाकायदा उनको सजाएं हुई हुई है, 25 साल है, सजाए मौत के कैदी थे, उनके साथ हमें रखा जाता है. अब मेंटली तौर पर टॉर्चर हम बहुत पीक लेवल पे, मैं भी बहुत हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत से वक्त गुजारा क्योंकि वहां मेरे साथ बहुत ज्यादा एजेड फीमेल्स थी. हमारी जो खवातीन थी उनको उस वक्त हिम्मत की जरूरत थी और मुझे लगा कि अगर मैं हिम्मत हारूंगी तो इनको कौन हिम्मत देगा. तो ये वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत से गुजारा. लेकिन फिजिकली टॉर्चर ये था कि वो स्टिक उनके हाथ में होती है, वो जो वहां पे मुहर्रर सो कॉल्ड होती है जेल की जो पुलिस होती है, वो आकर सुबह सुबह वो जो स्टिक थी वो हमारे बिस्तर के साइड पे मारती थी. एक दफा मुझे याद है मेरे सर के ऊपर भी वो लग गई थी जोर से. तो इस तरह का भी बहुत टॉर्चर है जो जेल में किया जा रहा है. तो ये सब जो हमारी खवातीन इस वक्त जेल में है जो बाहर आ गई हैं, उन सबकी नफ्सियात पे ये गहरा असर छोड़ रही
है. एक होता है कि चार्जेस लगना, अरेस्ट होना, एक होता है कन्विक्ट हो जाना. तो क्या जितनी खवातीन को अरेस्ट किया गया उनको कन्विक्टेड जो लोग थे उनके साथ रखा गया था?
जी उनके उनको कन्विक्टेड के साथ जो ऑलरेडी जेल में फीमेल्स रह रही हैं, खवातीन जो मैंने आपको बताया कि वो वहां पर मौजूद हैं ऑलरेडी, जो कैदी हैं जिनको सजाएं हुई हुई है, उसमें कुछ मंशियात की हैं, कुछ मर्डर्स की हैं, तो उनके साथ फीमेल्स को मैं भी उनके साथ ही रही हूँ. और आप खुद सोचें जो मंशियात वाली है वहां सरेआम ये चीज भी की जाती है. और अभी भी कुछ खवातीन जो हमारी हेयरिंग पे इधर आती हैं पीटीआई की, वो आकर मेरे सामने यही बात करती हैं कि अभी भी स्टिल हमें स्पेशली उन बैरक में भेज दिया गया है जहाँ सरेआम वो लोग नशा भी करती हैं वो खवातीन. तो जब उनका नशा जो है वो खराब होने लगता है तो वो चीख को पुकार शुरू कर देती हैं, गालम गलोज बहुत ज्यादा पीक लेवल पे, ये मैं खुद फेस करके आई हूँ. तो ये इस तरह की, ये तो एक नॉर्मल बात मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम वहां फेस करके आए हैं और अभी भी हमारी खवातीन जो इस चीज को फेस कर रही है. जी
करी थी 17 खवातीन स्टिल जेल में हैं, क्या उन पे चार्जेस हैं? और 9 मई कहा जाता है कि फैब्रिकेटेड था, इसकी बेनिफिशियरी कौन है? मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई इसकी बेनिफिशियरी हो, तो कराने वाले कौन हैं और क्यों ये वायलेशन हो रही है? क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोई नॉक किया गया?
जी मैडम, इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि जो ये इन्होंने जितने भी आवाम को इस वक्त 9 मई के वाकयात में अरेस्ट करके जेल में भेजा है, वो सब जो है मैंने जो खुद देखा है वो सब मुहिब्बे वतन है. वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आप देखिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है. हमारा तो सिर्फ इतना ही एक हम लोग कहते हैं कि आप आए और आप दे जिन जो इनका प्रूफ होता है आप दे सजाएं उनको दे, लेकिन उसके चक्कर में आपने कई बेगुनाह लोगों को अरेस्ट करके घरों में आपने उनको जेलों में भेज दिया है. उसमें कुछ आज मेरे पास कुछ केसेस आए हैं, उसमें हम लोगों ने बेल जब उनकी फाइल करने लगे तो हमें पता चला कि कुछ जो मेल वर्कर हैं उनमें कुछ हम वर्कर का नेम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी से जेल में है तो हम उनको इस नेम से बुलाते हैं, अदरवाइज उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है. कुछ जूते पॉलिश करने वाला है, कुछ एक खातून मेरे साथ मुमताज बीबी जेल में रह के आई, वो लोगों के घरों में काम करती है, उसको पता भी नहीं है कि पीटीआई क्या चीज है. उसने सिर्फ उस माहौल में अपने बेटे को फोन किया कि ये हालात खराब है आके ले जाओ, बस. वो उसका बेटा भी अरेस्ट स्टिल इन वो इन कस्टडी और अभी जो है वो बेल आउट होके दोबारा उसको अरेस्ट किया गया और देन उसकी सेकेंड टाइम बेल हुई. तो इस तरह के बहुत सारे ये लोग हैं जिनको ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन बहुत पीक लेवल पे हो रही है. और दूसरा जो इसके कसूरवार हैं उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए अगर ये वाकया रूमा हुआ है तो. अगर प्रॉपर देखा जाए कि बड़े ये हाई लेवल पे ह्यूमन राइट्स की क्या वुमेन राइट्स की जितनी भी आप हिस्ट्री उठा के हमारे पीछे देख लें इस्लाम में तो हमेशा फीमेल्स को जो था उनको हमेशा साइड पे रखा जाता था, बच्चों और खवातीन को हमेशा साइड पे रखा जाता था देन आप आगे मूव करते थे. यहाँ तो इन्होंने सबसे पहले फ्रंट लाइन पे ही फीमेल्स को रख लिया और जो कन्विक्टेड है ही नहीं, हम सब जितने भी फीमेल्स इस वक्त अरेस्ट हैं वो नामालूम कैटेगरीज में है, नामालूम कैटेगरीज में उनका कोई चीज अगर शो नहीं हो रही तो उनको बेल आउट करना चाहिए, वो बेल आउट होनी चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी, हम तो डेली यही कोर्ट में पेयर होके उनके सामने प्रूफ भी रखते हैं। आई डोंट नो कि इस तरह जो हाईलाइट कर दिए गई हैं फीमेल्स हमारी, उनको बेल आउट होते ही दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ये फीमेल राइट्स की जो एक प्रॉपर लेवल पर, हाई लेवल पे, पीक लेवल पे जो उसकी वायलेशन हो रही है, तो इसको रोकने की जरूरत है।
ये उनकी बेल होती है और कोर्ट से निकलते ही उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या आप तो वहां गुजरी हैं, 18 दिन आपने गुजारे हैं, तो क्या प्रेशराइज किया जाता है कि पीटीआई को छोड़ दिया जाए?
जी
सही बताइए, किस किस किन अल्फाज में वो प्रेशराइज करते हैं कि आप पीटीआई को छोड़ दें?
जी, एक तो ये बताऊंगी कि जब मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे 2 दिन पहले कॉल आती है अरेस्ट करने से पहले कि आपका नाम जियो फेंसिंग में आ गया, तो आप कोई एक एफिडेविट दें और अपनी जान छुड़ा लें, और एफिडेविट में आपने लिखना है कि आपका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। देखिए, मैं पीटीआई की लॉयर, इंसाफ लॉ फोरम की प्रेजिडेंट हूँ, मैं पीटीआई के लिए काम करती हूँ। इट डजेंट मीन कि आप मुझे ही पकड़ के अंदर जेल में डाल दें कि आपका जियो फेंसिंग में जी नाम आया है, हमारी वहां कैंट कचहरी है, डेली हमने जाना है आना है। ये अलग बात है कि मैं पीटीआई की लॉयर हूँ और नेक्स्ट डे आप मुझे अरेस्ट कर ले जाते हैं, फिर बाद में ये कह जाता है कि आप एक एफिडेविट दें विद प्रूफ। और अगर मैं कोई बड़ी सियासतदान होती तो मैं अपनी जान छुड़ा लेती कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन मुझे एफिडेविट का कहा गया, तो बाकी जो लेडीज है उनको भी कहा गया। देखिए, जब जेलें काट ली, एक रात की जेल में गुजारना मेरे ख्याल से 1000 साल के बराबर पर है, कोई आसान नहीं है। तो उसके बाद हमारा तो जीना मरना ही पीटीआई के साथ है इंशाल्लाह।
मगर मैं यहाँ, सो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ ये कहूंगी कि जब ऊंटों से यारी की तो दरवाजे तो फिर बड़े रखने पड़ेंगे। सो पाकिस्तान की तारीख ये है, मैं बड़े गम के साथ कहना चाहती हूँ और मैं इदारों से बात ये करना चाहती हूँ कि आप कितना अरसा जिंदा रह लेंगे। आज हिंदुस्तान और बांग्लादेश मिलके मुजीबुर रहमान के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। आप हिंदुस्तान की फिल्मों को पहले भी कहते हैं कि ये फिल्में जो हैं ब्रेन वॉश करती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप देखिएगा, उन्होंने तो हमेशा वो केसेस पेश किए जिनकी हकीकत भी नहीं थी। अब आप पाकिस्तान के हालात और उसके तनाजर में आप देखें कि अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश मिलकर ये फिल्म बना लेते हैं तो बांग्लादेश के लोगों में कितनी नफरत होगी। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से हैं वो जब इस फिल्म को देखेंगे तो कितनी नफरत पैदा हो जाएगी। तो खुदा का वास्ता है, कोई सीधा रास्ता इख्तियार करें। मुझे आप ये बताइएगा कि जनाब काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद, मेरे साथ कर्नल इनाम भी होंगे आज, उन्होंने एक बड़ा हौसला अफजा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था कि हम पिटीशंस दायर करते थे और पाकिस्तान में पिटीशंस का कब्रस्तान था, मगर काजी फायज ईसा के आने के बाद, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट ही हैज जस्ट 13 मंथ्स 14 मंथ्स उनके पास पीरियड है, और काजी फायज ईसा ने भी कीमत चुकाई थी इमरान खान साहब को, जिन लोगों ने गलत गाइड किया, उन्होंने कोर्ट में अपनी बीवी और ये वो के साथ रहे। मगर आज बड़ा हौसला कुन पैगाम मिला है कि काजी फायज ईसा साहब, और ये मैं कोई सुनी सुनाई खबर या सोशल मीडिया की न्यूज नहीं करी, कल ने नाम मेरे साथ होंगे, उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी डिफरेंट नाउ कि जनाब काजी फायज ईसा साहब ने जो पिटीशंस दायर की हैं, हम लोगों को लिंक तमाम लाइव हो गई हैं पिटीशंस, और हमें लिंक दे दिया गया है कि हम अपनी पिटीशंस को फॉलो कर सकते हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर हो रही हैं। तो डू यू थिंक कि काजी फायज ईसा के आने के बाद बहुत सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि उन्होंने अपनी जाती जो दुश्मनी थी, दुश्मनी उनकी क्या होगी, या जाती जिन लोगों ने उनको तंग भी किया था, उन चीजों को भी पसे पर्दा रख के या पीछे डालने के बाद कानून की बालादस्ती की तरफ कदम बढ़ाया है, तो आपकी क्या तवक्कात हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब एज ए चीफ जस्टिस?
जी, काजी फायज ईसा साहब हमारे लिए बहुत काबिल मोहतरम है चीफ जस्टिस साहब। उनका जब ये प्रोसेस एक चल रहा था, जब उनका एक रेफरेंस वो आया था उसके ऊपर, तो यहाँ पंजाब बार काउंसिल में उनकी एक दो लेक्चर हुआ था, तो मैंने वो अटेंड किया था और एज अ लॉयर मैं वहां पे प्रेजेंट थी। मैं जब हम एक कोर्ट में होते हैं ना, तो हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, हम कानून के लिए काम करते हैं, कानून के लिए बोलते हैं और कानून के मुताबिक ही फैसले चाहते हैं। तो मैंने जब उनको सुना तो मुझे फील हुआ कि यहाँ गलती हुई है, यहाँ इनके अगेंस्ट चीजें जा रही है, लेकिन ये जो इंसान है एज अ पर्सन, मैंने जब उनको देखा कि मैंने कहा जब ये लीग सीट पे आएंगे तो इनशाला फैसले बहुत अच्छे होंगे। तो अभी भी हमें स्टेट बहुत उम्मीद है उससे कि हम तो चाहते हैं कि आप एक बड़ी सीट जब अल्लाह ने आपको दी है तो आप फैसले देखिए, ये जो खासियत है एक अल्लाह की, ये अल्लाह की है, और आप जब इस सीट पे आते हैं तो आप इस चीज के जवाबदेह भी होते हैं। तो फिर हम इस चीज की उम्मीद तो जरूर रखते हैं। मैं अभी उनके बारे में कोई राय नहीं देना चाहती, लेकिन हमें उम्मीद बहुत है, और इंशाल्लाह अभी जब उनके आने के बाद से काफी ज्यादा प्रोसेस जो है वो एक नरमी आई है इस चीज में। हमारी बहुत सारी चीजें थी जो एक नीचे लेवल पे जो हमारी बेस थी वो रुकी हुई थी, लेकिन अब जैसा उन्हें सुन रहे हैं और बड़े तामुल से आगे फैसले दे रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर से फ्रंट लाइन से प्रेशर होता है ना कि आपने फैसले देने हैं, लेकिन अगर जो चीज है आपको नजर आ रही है कि वो बंदा इन्वॉल्वमेंट है उसकी, उसको आप रोक दें, लेकिन जिसकी नहीं उसको तो आप जेल से बाहर निकालें। सेकेंडली मैं इसमें ये बात कोट करूंगी कि मैं आज एक चीज सोच रही थी कि जब आप कल को हमारे चलान अदालत में जमा हो चुका है, ये जितना भी हमारे 9 मई के हैं, इस वक्त 16 FIR है मुकदमे, तो इनमें जब अगर जो लोग बाइज्जत बरी होंगे, तो जब वो बाइज्जत बरी होंगे तो बाद में आप उनको क्या बताएंगे कि वो 5 महीने जो जेल में रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो खुदारा ये आपकी अपनी आवाम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारी अपनी आवाम है, हमें इन्हें अपने खिलाफ नफरत नहीं फैलानी है। बहुत हो चुका, हमारे ये लोग हैं, मुहिबे वतन है जो पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है। हम तो इस आप उनके ऊपर एक दहशत गर्दी का पर्चा लगा रहे हैं, आप एक दहशत गर्दी के अंदर उनको डाल रहे हैं, अपने उन वोट बैंकर्स को जो आपका अपना वोट है, आपका मुस्तकबिल।
बड़ा अजीब सा सवाल मैं आपसे करने लगी हूँ। बलूचिस्तान में गुमशुदगियां, जबरी गुमशुदगियां बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई, बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी भी हुई। इस वक्त जितनी केयर टेकर गवर्नमेंट है, 6 तो मिनिस्टर्स ही मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से है, 6 मिनिस्टर्स जिन्होंने वोट लिया वो बलूचिस्तान से है, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसमें मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजिशन आर जो लोगों को सिलेक्ट किया गया है दोज आर फ्रॉम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से बेशुमार लोगों ने तहरीक भी चलाई जो कि पाकिस्तान से, जब वो नहीं उनकी शुनीद हुई तो वो पाकिस्तान, बड़े पढ़े लिखे लोग भी पाकिस्तान से बाहर निकले और उन हाथों में खेल गए जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यू एज मिस खान बलोच, आप पाकिस्तान के अंदर हैं और राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं, डोंट दे एक्नॉलेज इट के अगर वो कहते हैं ना, अगर जीनियस लोग जो हैं अगर उनको सही सिंथ ना मिले तो वो इविल माइंड्स बन जाया करते हैं, तो देन आर दे नॉट कंसर्न्ड कि ये जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की अंदर रह के अपने मुल्क में उस जद्दोजहद को लड़ रहे हैं, अगर ये गैर मुल्की हाथों में बिके, बेशुमार लोग बिके हुए हैं और हमारे हमसाए जो हैं वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करा रहे हैं, कनाडा के में रहते हुए उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा लिया, तो पाकिस्तान में वो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तो हर आदमी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट कैन डू एनीथिंग। तो डू दे एक्नॉलेज कि आप पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए अगर बात कर रही हैं, आप वकील हैं, आप मुल्क के अंदर बैठी हुई हैं, तो अगर ये लोग भी उन हाथों में बिक गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा।
जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। इसमें मैं ये समझती हूँ कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, इसका भी एक लेवल होता है, भी ये इनिशियल लेवल पे है, तो हम अगर इसको यहीं से रोक लेंगे तो बहुत सारी चीजें संभल जाएंगी। अब डेली जो हम अदालत में जब जाते हैं, हेयरिंग्स होती हैं, आते हैं हमारे जो वर्कर्स जितने भी आते हैं, खवातीन हैं वो आती हैं, तो उसमें से कुछ हम एक दो को हमने सुनने को मिला कि जी जैसे हमारा मुकदमा खत्म होगा हमने बाहर चले जाए। मैंने उनको बोला ये पाकिस्तान, हम यहाँ आपके लिए खड़े हैं ना, हम नहीं भागे पाकिस्तान से, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान देखिए हमारा मुल्क है, ये जो मामलात अब इस वक्त चल रहे हैं, जो ये लोग चला रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं वो चले जाएंगे, हमने यही रहना है, ये हमारा मुल्क है, हमने इससे बाहर नहीं जाना, हमने जाना ही नहीं है, हम ये सोच नहीं सकते, हमारी पूरी फैमिलीज यहाँ पर है, हम नहीं छोड़ सकते, हमें तो मोहब्बत है। लेकिन अगर हम इसको इनिशियल लेवल पे, अभी तो मैं ये समझती हूँ ये इनिशियल लेवल है, अगर हम इसको अभी इस लेवल पे नहीं रोकेंगे तो ये हम अपने खिलाफ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हम नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ इस वक्त जो हमारे मुर्बे वतन अंदर बैठे हैं वो बाहर निकल के वो चाहेंगे कि हम इस लेवल पे आए और हम पाकिस्तान को ठीक करें, एक पॉजिटिविटी हम भी इसमें नजर आ सकती है, हम एक मस्बत पहलू भी इसमें ढूंढ सकते हैं, मनफी पहलू होंगे और कुछ में होंगे लेकिन सब में नहीं होंगे।
आपसे अब अपना पैगाम दीजिएगा और मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है, जियाउल हक साहब ने बड़ा गदर किया था और आज उनके बेटे और एक और साहब अडियाला जेल में जनाब इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, सुना उनको प्रेशराइज किया कि आप पीटीआई को छोड़ दें, विच ही रिफ्यूज, उन्होंने कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा ना कहें, जिस पे उन्होंने किसी हद तक खामी भरी, मगर उन्होंने ये कहा कि जो ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं 9 मई के वाक्य से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको बेल आउट किया जाए, तो उनको बेल किया, उनकी बेल्स ली जाए और उनको मतलब फेयर केसेस उनके अगेंस्ट हो, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसको खत्म किया जाए। डू यू थिंक के इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो मुल्क को छोड़ दें या पार्टी को छोड़ दें या उनके सिलेक्टेड लोग पार्टी की लीड ले लें? तो व्हाट डू यू सी अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान फ्यूचर?
इसमें तो सबसे पहले ये बात है कि खान साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश तो पहले से इनसे जारी थी और वो चाहते थे कि जैसे हमने इनके वर्कर्स या इनकी आवाम या इनके लीडर्स को किया है हम खान साहब को भी वैसे ही करें, लेकिन खान साहब एक दिलेर बंदे हैं, हम उनकी आवाम हैं, खान साहब लीडर हैं। देखिए लीडर की जो क्वालिटी होती है वो लेट डाउन करने वाली तो होती नहीं है, जो लेट डाउन करते हैं वो लीडर ही नहीं होता, तो खान साहब लेट डाउन कभी नहीं होंगे और वो लीडर हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर अब जेलें काट ली, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अगर एक दिन जेल में गुजार ली है उसके बाद अब जी मुल्क से बाहर चले जाएं, अगर वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो क्या सलूशन है? खान साहब इस वक्त ये पैगाम जेल से भिजवा रहे हैं कि जी आप मुझे साइड पे कर दें, मेरे वर्कर्स को बाहर निकालें, क्या वो बंदा अपने वर्कर्स को यहाँ छोड़ के बाहर के मुल्क चला जाएगा? क्या गारंटी है इस बात की कि उनके मुल्क से बाहर जाने के बाद यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे? फिर पीटीआई का क्या बनेगा? नहीं, खान साहब कहीं नहीं जाएंगे, खान साहब इधर ही रहेंगे। ये एक जंग है। देखिए जब हम इंकलाब की बात करते हैं तो इंकलाब कुर्बानियां मांगती है, वो आजमाइश मांगती है, और अल्लाह जब आजमाइश देता है तो उसमें सब्र तहम्मुल और हिम्मत के साथ मुजाहरा किया जाता है कि मुश्किल वक्त आया है पार्टी पर और इंशाल्लाह हम इससे जरूर जल्द निकलेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और खान साहब ने बिल्कुल यही कहा है कि ना तो पार्टी को छोड़ूंगा, मगर एस्टेब्लिशमेंट के लिए रवैया उन्होंने नरम करना जरूर चाहा। आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और आप सुना करती होती थी कि जबरी गुमशुदगियां सिर्फ बलूचिस्तान में होती हैं, नाउ यू हैव सीन कि पंजाब में क्या हो रहा है, और पंजाब तो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज करने वाला सूबा है, आज से नहीं, बहुत पीछे तारीख में चले जाएं ये तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करने वाला सूबा है। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा। आई होप यू विल कम बैक विद द गुड न्यूज कि तमाम लोगों को रिलीज किया गया और इस मुल्क में, पाकिस्तान मेरे अजीम वतन में, कानून की बालादस्ती हुई और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है अब नहीं होती। आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है किसी शख्स की बजाय, मगर वी नीड ऑनेस्ट पीपल अराउंड अस। अभी दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
यू आर वॉचिंग ई आवाज टीवी, वॉइस ऑफ कम्युनिटी।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है।